कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, इन दिनों हम पहला शमूएल नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस अध्ययन से आप आत्मिक लाभ अवश्य प्राप्त कर रहे होंगे। परमेश्वर से प्राप्त की गई आशीषों को हमसे बांटिए और लगातार प्रार्थना में रहकर सुनते रहिए सत्य वचन।
यीशु तू है एक सच्चा साथी, सच्चाई है तेरा मार्ग। यीशु तू है एक सच्चा साथी, सच्चाई है तेरा मार्ग। राह पर जो कदम हम रखें, मिलता है तेरा प्यार। तेरा प्यार अनोखा, उसमें जो डूबा होता है उसका उद्धार। यीशु तू है एक सच्चा साथी, सच्चाई है तेरा मार्ग।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर की दया में रह करके कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं अपने उन नए श्रोता मित्रों का स्वागत करता हूँ जो पहली बार आज हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम पुराने नियम की पुस्तक पहले शमूएल की पुस्तक के अंतिम भाग में आ गए हैं और इसके साथ आज हम दूसरी शमूएल का भी आरंभ करेंगे। और जैसे कि हमने देखा था पिछले अध्ययन में, दाऊद शाऊल से दुखी होकर इसराइल त्याग कर पलिश्तियों के देश में चला जाता है और वहां पर एक हाकिम आकीश का विश्वास पात्र बन जाता है। उसे रहने के लिए सिगलग नगर दे दिया जाता है और दाऊद वहां पर अपने 600 योद्धाओं के साथ सपरिवार वास करने लगता है। अब पलिश्तियों ने इसराइल पर आक्रमण करने का विचार किया। आकीश दाऊद को अपना अंगरक्षक बनाकर युद्ध में ले जाना चाहता है, परंतु अन्य पलिश्ती हाकिम सेना में दाऊद की उपस्थिति का विरोध प्रकट करते हैं। तब आकीश उसे घर लौट जाने के लिए आग्रह करता है और यह भी परमेश्वर का ही एक हस्तक्षेप था, अन्यथा दाऊद को अपने भाइयों के खून से हाथ रंगने पड़ते, जिसके कारण उसे आजीवन पछताना पड़ता। तब हम देखते हैं कि इधर दाऊद की अनुपस्थिति में अमालेकी सिगलग को लूटकर उजाड़ देते हैं और माल एवं पशुओं के साथ उनकी पत्नियों और बच्चों को बंदी बना करके ले जाते हैं। दाऊद महायाजक के माध्यम से परमेश्वर की इच्छा जानना चाहता है तो परमेश्वर उसको कहता है कि उनका पीछा कर। मार्ग में दाऊद को एक अमालेकी हाकिम का मिस्री दास मिलता है, जिसे बीमार होने के कारण उन्होंने मरने के लिए छोड़ दिया था। उसकी सहायता से दाऊद अमालेकियों तक पहुंचता है और वे अमालेकी जो लूट के आनंद में पीकर नाच रहे थे, तो दाऊद ने उन्हें मारा और मारता ही चला गया और फिर सारे लूट का माल, बच्चे और स्त्रियों को छुड़ाकर घर को लौट आया। तब हम देखते हैं कि घर पहुंचकर दाऊद ने लूट के माल से सब यहूदी पुरियों का भाग उन तक पहुंचाया और शेष लूट निष्पक्ष होकर सब में बांट दिया। आज हम अपने अध्ययन को अध्याय 31 से आरंभ करेंगे, लेकिन इसके पूर्व आइए हम सब परमेश्वर से प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, आपकी संगति के लिए जो आप हमें प्रतिदिन रेडियो के माध्यम से वचन सीखने के लिए देते हैं। पिताजी, जब हम आज आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे हरेक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि एक एक जन जब आपके वचन को सुनती है तो निश्चय ही आपका वचन प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए। उनके जीवन में यदि किसी प्रकार की निराशाएं हैं, परेशानी है, चिंता है, दुख है, प्रभु आप उनकी सहायता करें ताकि वे आप पर भरोसा रखने पाएं और आप पर विश्वास कर सकें कि आप उन्हें छुटकारा दे सकते हैं। हाँ प्रभु, इस समय हम हरेक को आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि मैंने कहा कि आज हम अध्याय 31 में से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। अध्याय 31 में शाऊल और योनातान की मृत्यु का उल्लेख है। शमूएल की पहले पुस्तक का यह अंतिम अध्याय है और फिलिस्ती इसराइल से युद्ध कर रहे थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वह युद्ध में नहीं था। परमेश्वर के हस्तक्षेप द्वारा वह युद्ध से बाहर रखा गया था, क्योंकि फिलिस्तियों ने उस पर भरोसा नहीं किया और वह अपने घर लौट आया था। तब हम यहाँ पर देखते हैं कि इधर दाऊद अमालेकियों का पीछा कर रहा था और उधर इसराइली फिलिस्तियों के सामने से भाग रहे थे। उनकी पराजय का कारण था कि वे परमेश्वर की इच्छा में नहीं थे। मित्रों, हम देख चुके हैं कि शाऊल ने इस युद्ध में परमेश्वर की इच्छा जानना चाहिए, परंतु परमेश्वर चुप रहा। इस कारण शाऊल एंदोर में भूत सिद्धि करने वाली एक स्त्री के पास गया। उसकी इस अनाज्ञाकारी और विद्रोह के कारण परमेश्वर ने उससे मुंह मोड़ लिया था। आइए हम पढ़ते हैं पहला शमूएल 31 अध्याय उसका एक पद। फिलिस्ती तो इसराइलियों से लड़े और इसराइली पुरुष फिलिस्तियों के सामने से भागे और गिलबो नाम पहाड़ पर मारे गए। ध्यान दीजिए कि आरंभ ही से युद्ध में इसराइलियों का पलड़ा भारी नहीं था। तब हम आगे पढ़ते हैं पहला शमूएल 31 अध्याय के 2 और 3 पद में। और फिलिस्ती शाऊल और उसके पुत्रों के पीछे लगे थे, और फिलिस्तियों ने शाऊल के पुत्र योनातान, अबीनादाब और मलकीस को मार डाला। और शाऊल के साथ घमासान युद्ध हो रहा था और धनुर्धारियों ने उसे जा लिया और वह उनके कारण अत्यंत व्याकुल हो गया। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि शाऊल का भविष्यवाणी के अनुसार अंत आ गया था। पहले तो उसे तीर लगा और संभवतः उस धनुर्धारी अर्थात धनुष पकड़ने वाले को स्वयं पता नहीं था कि उसने राजा को मारा था। निशाना अचूक था और दुख की बात तो यह थी कि योनातान इस युद्ध में मारा गया। यह एक विचित्र बात थी, क्योंकि इससे पूर्व योनातान ने युद्ध में 250 फिलिस्तियों को अकेले ही मारा था। मेरे मित्रों, इससे स्पष्ट है कि इस बार फिलिस्तियों की सेना अति विशाल थी और यह अति संभव था कि इस युद्ध में दाऊद और योनातान आमने सामने होते। अतः परमेश्वर ने दाऊद को युद्ध क्षेत्र से हटा लिया था। हम आगे देखते हैं शाऊल का घायल होना। पहला शमूएल 31 अध्याय उसके 4 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, तब शाऊल ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भोंक दे, ऐसा ना हो कि वे खतना रहित लोग आकर मुझे भोंक दे और मेरी ठट्ठा करें। परंतु उसके हथियार ढोने वाले ने अत्यंत भय खाकर ऐसा करने से इनकार किया। तब शाऊल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। मेरे प्रियो, जब शाऊल ने देखा कि घायल होने के कारण उसके बचने की आशा नहीं है, तो उसने सोचा कि बैरी उसे कोसते हुए उसकी निंदा करेंगे और उसका सोचना सही था। शाऊल एक घमंडी और अहंकारी मनुष्य था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका अंत ऐसा होगा। उसका हथियार ढोने वाला उस पर हाथ उठाने से डरता था, यद्यपि शाऊल ने उसे आदेश दिया था कि वह उस पर तलवार से वार करे। अतः शाऊल स्वयं तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। मित्रों, ऐसा प्रतीत होता है कि उसने आत्महत्या की थी। क्या वास्तव में यह आत्महत्या थी? हम पहला शमूएल 31 अध्याय 5 से 9 पद में पढ़ते हैं, यह देख करके शाऊल मर गया, उसका हथियार ढोने वाला भी अपनी तलवार पर आप गिरकर उसके साथ मर गया। यों शाऊल और उसके तीनों पुत्र और उसका हथियार ढोने वाला और उसके समस्त जन उसी दिन एक संग मर गए। यह देख करके इसराइली पुरुष भाग गए और शाऊल और उसके पुत्र मर गए। उस तराई की परली ओर वाले और यर्दन के पार रहने वाले भी इसराइली मनुष्य अपने अपने नगरों को छोड़कर भाग गए और फिलिस्ती आकर उनमें रहने लगे। दूसरे दिन जब फिलिस्ती मारे हुए के माल को लूटने आए, तब उनको शाऊल और उसके तीनों पुत्र गिलबो पहाड़ पर पड़े हुए मिले। तब उन्होंने शाऊल का सिर काटा और हथियार लूट लिए और फिलिस्तियों के देश के सब स्थानों में दूतों को इसलिए भेजा और उनके देवालयों और साधारण लोगों में यह शुभ समाचार देते जाएं। मेरे मित्रों, अब हम समझ सकते हैं कि शाऊल के कवच और हथियारों द्वारा दाऊद को लैस करने का अर्थ क्या था। इसका अर्थ होता है कि राजा का नाम। यही कारण था कि पलिश्तियों ने शाऊल के हथियार लूटे। यदि दाऊद उन्हें पहनकर गोलियत को मारता तो शाऊल का नाम होता। उसके पुत्र के साथ भी ऐसा ही हुआ था। योनातान युद्ध में विजयी हुआ था और शाऊल ने तुरही फूंक कर अपना नाम बड़ा किया। आइए हम पढ़ें पहला शमूएल 31 अध्याय उसके 10 से 13 पद। लिखा है, तब उन्होंने उसके हथियार और अस्तोरेत नाम देवियों के मंदिर में रखे और उसकी लोथ बेतशान के शहरपनाह में जड़ दी। जब गिलाद वाले याबेश के निवासियों ने सुना कि पलिश्तियों ने शाऊल से क्या क्या किया है, तब सब शूरवीर चले और रातों रात जाकर शाऊल और उसके पुत्रों की लोथें बेतशान और शहरपनाह पर से याबेश में ले आए और वहीं फूंक दी। तब उन्होंने उनकी हड्डियां लेकर याबेश के झाऊ के पेड़ के नीचे गाड़ दी और 7 दिन तक उपवास किया। मेरे प्रिय मित्रों, पहला शमूएल की पुस्तक का यहाँ समापन होता है। कोई कहेगा शाऊल के मृत्यु कोई बड़े भेद की बात तो नहीं थी। हमारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। दूसरा शमूएल की पुस्तक में हम इसे फिर देखेंगे। शाऊल ने अमालेकियों का सर्वनाश नहीं किया था, जिसके लिए शमूएल ने उसे झिड़का भी था। उसने शाऊल से कहा था, आज्ञा मानना बलि चढ़ाने से और सुनना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। परमेश्वर आज्ञा पालन चाहता है। शाऊल ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने सिर नहीं झुकाया था। शाऊल ने कुछ अमालेकियों को बचाकर भागने दिया और अमालेकी ही उसकी हत्या का कारण बने। मित्रों, आप कहेंगे हम तो उसकी मृत्यु का वर्णन पढ़ चुके हैं कि वह पलिश्तियों के हाथ मारा गया था। जी हाँ, एक पलिश्ती धनुर्धारी ने उस पर तीर चलाया और वह घायल हो गया था। उसने अपने हथियार ढोने वाले को आज्ञा दी कि वह उसे तलवार से मार दे, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। अंत में शाऊल स्वयं अपनी तलवार पर गिरकर मर गया। क्या ऐसा नहीं लिखा है? क्या यहाँ कहानी समाप्त नहीं हो गई? मेरे विचार में केवल ऐसा ही नहीं हुआ था। दूसरा शमूएल में हमें अधिक जानकारी मिलेगी। आइए हम देखें अध्याय 1 में दाऊद शाऊल और योनातान की मृत्यु पर विलाप करता है। दूसरा शमूएल की पुस्तक उसके पहले अध्याय में इन बातों को हम पाएंगे और इस अध्याय में शाऊल के हत्यारे का स्पष्टीकरण नहीं है, परंतु एक और संदिग्ध व्यक्ति जोड़ा जाता है। एक युवा अमालेकी ने दाऊद के पास आकर शाऊल की हत्या का श्रेय पाना चाहा, परंतु दाऊद ने उस अपराध के लिए उसे मृत्यु दंड दिया। योनातान और शाऊल के मृत्यु पर दाऊद का विलाप मार्मिक काव्य रूप में अति नाटकीय है। यह एक उत्कृष्ट विलाप गीत है। मित्रों, हम देखते हैं कि शाऊल की हत्या का एक और संदिग्ध है। आइए हम पढ़ें दूसरा शमूएल की पुस्तक 1 अध्याय उसके 1 और 2 पद। शाऊल के मरने के बाद जब दाऊद अमालेकियों को मारकर लौटा और दाऊद को सिगलग में रहते हुए 2 दिन हो गए, तब तीसरे दिन ऐसा हुआ कि छावनी में से शाऊल के पास से एक पुरुष कपड़े फाड़े सिर पर धूली डाले हुए आया और जब वह दाऊद के पास पहुंचा तब भूमि पर गिरा और दंडवत किया। मेरे प्रियो, इसराइल के इतिहास में यह दिन अंधकार का दिन था। युद्ध और पराजय का मुख्य कारण था कि वे परमेश्वर की इच्छा में नहीं थे। इसमें हमारे लिए शिक्षा है। विश्व युद्ध 2 के पश्चात ऐसा प्रतीत हुआ कि विश्व में शांति व्याप्त हो जाएगी। हमने परमेश्वर का त्याग और पाप का जीवन अपना लिया और सच तो यह है कि जिस देश का या जाति में परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं की जाती, वहां अव्यवस्था और युद्ध होते रहते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक 57 अध्याय उसके 21 पद में परमेश्वर कहता है, दुष्टों के लिए शांति नहीं है, मेरे परमेश्वर का यही वचन है। जी हाँ, यशायाह ने 3 बार यह बात कही है। मैं सोचता हूँ कि हमारे साथ यह सच तो नहीं? जी हाँ, जैसा मैंने कहा, इसराइल के लिए यह अंधकार का दिवस था। आप उनकी दशा देख सकते हैं। राजा शाऊल मारा गया था, योनातान और उसके 3 पुत्र भी मारे गए थे। इसराइल युद्ध में हार गया था। पलिश्तियों ने गलील का संपूर्ण उत्तरी क्षेत्र अपने अधिकार में कर लिया था और अब दक्षिण का प्रदेश भी उनके पास था। प्रिय मित्रों, दाऊद के पास युद्ध का समाचार नहीं था। अपने साथियों के साथ वह अमालेकी लुटेरों से अपने प्रियजनों को छुड़ाने के लिए गया था। उन्हें सिगलग में लौटे 2 दिन हो गए थे और अब तक उन्हें युद्ध का कोई समाचार नहीं मिला था। एक पुरुष फटे हाल में धूल में लिपटा और पूर्ण रूप से अस्त व्यस्त दाऊद के शिविर में लड़खड़ाता हुआ पहुंचता है। उसने कहा कि वह युद्ध क्षेत्र से आ रहा है और शाऊल युद्ध में मारा गया है। उसने दाऊद को पूरा वृतांत सुनाया। तब हम दूसरा शमूएल 1:3-10 में पढ़ते हैं। दाऊद ने उससे पूछा, तू कहां से आया है? उसने उससे कहा, मैं इसराइली छावनी में से बचकर आया हूं। दाऊद ने उससे पूछा, वहां क्या बात हुई, मुझे बता। उसने कहा, यह कि लोग रणभूमि छोड़कर भाग गए और बहुत लोग मारे गए और शाऊल और उसका पुत्र योनातान भी मारे गए हैं। दाऊद ने उस समाचार देने वाले जवान से पूछा कि तू कैसे जानता है कि शाऊल और उसका पुत्र योनातान मर गए? समाचार देने वाले जवान ने कहा, संयोग से मैं गिलबो पहाड़ पर था तो क्या देखा कि शाऊल अपने भाले की टेक लगाए हुए है। फिर मैंने यह भी देखा कि उसका पीछा किए हुए रथ और सवार बड़े वेग से दौड़े आ रहे हैं। उसने पीछे फिरकर मुझे देखा और मुझे पुकारा। मैंने कहा, क्या आ गया? उसने मुझसे पूछा, तू कौन है? मैंने उससे कहा, मैं तो अमालेकी हूँ। उसने मुझसे कहा, मेरे पास खड़ा होकर मुझे मार डाल, क्योंकि मेरा सिर तो घुमा जाता है परंतु प्राण नहीं निकलता। तब मैंने यह निश्चय जान लिया कि वह गिर जाने के पश्चात नहीं बच सकता। उसके पास खड़े होकर उसे मार डाला और मैं उसके सिर का मुकुट और उसके हाथ का कंगन लेकर यहाँ अपने प्रभु के पास आया हूँ। मेरे मित्रों, क्या यह अमालेकी सच बोल रहा था या उसने शाऊल के सौ से मुकुट और कंगन उतार लिया था? मेरे विचार में जब यह अमालेकी वहां पहुंचा तब शाऊल अधमरा था और संभवतः उसने उस अमालेकी से निवेदन किया कि वह उसका अंत कर दे। यहां रोचक बात तो यह है कि वह अमालेकी दाऊद को सब कुछ सच सच बता रहा था। संभवतः वह सोच रहा था कि दाऊद उसे इसके लिए पदक या इनाम देगा और उसकी पेंशन बांध देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हम दूसरा शमूएल 1:11-14 में पढ़ते हैं। तब दाऊद ने अपने कपड़े पकड़कर फाड़े और जितने पुरुष उसके संग थे उन्होंने भी वैसा ही किया और वे शाऊल और उसके पुत्र योनातान और यहोवा की प्रजा और इसराइल के घराने के लिए छाती पीटने और रोने लगे और सांझ तक कुछ न खाया, इस कारण कि वे तलवार से मारे गए थे। फिर दाऊद ने उस समाचार देने वाले जवान से पूछा, तू कहाँ का है? उसने कहा, मैं तो परदेसी का बेटा अर्थात अमालेकी हूँ। दाऊद ने उससे कहा, तू यहोवा के अभिषिक्त को नाश करने के लिए हाथ बढ़ाने से क्यों नहीं डरा? मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस अमालेकी ने शाऊल को मारा क्योंकि पहला शमूएल में दिए गए परमेश्वर के आदेश का पालन न करते हुए शाऊल ने अमालेकियों का सर्वनाश नहीं किया था। यदि शाऊल उस समय परमेश्वर की आज्ञा को मानता तो यह पुरुष भी मारा जाता और शायद शाऊल की जान बच जाती। दाऊद ने उसे पूछा कि परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ डालते हुए उसे डर क्यों नहीं लगा? आपको स्मरण होगा कि अवसर पाने पर भी दाऊद ने शाऊल का वध नहीं किया। परमेश्वर का दृष्टिकोण अपनाना अच्छा ही होता है। जब तक शाऊल राजा था दाऊद ने उस पर हाथ नहीं डाला। उचित था कि उसे कोई और भी नहीं छूता क्योंकि परमेश्वर ने उसके सिर पर मुकुट रखा था। परमेश्वर ही एकमात्र था जो समय आने पर उसका मुकुट उतार लेता या उतार सकता था। मित्रों, परमेश्वर के काम में हस्तक्षेप करना संकटपूर्ण होता है। मैं आपको कुछ रोचक कहानियां सुना सकता हूं जिनमें मनुष्यों ने परमेश्वर के कामों में, परमेश्वर के कार्यों में और परमेश्वर के जनों के साथ हस्तक्षेप किया। परमेश्वर उठकर दंड देता है, उसने सदा ऐसा ही किया है। मेरे मित्रों, यही कारण था कि दाऊद ने इस युवा अमालेकी से कहा, तू यहोवा के अभिषिक्त को नष्ट करने के लिए हाथ बढ़ाने से क्यों नहीं डरा? हम दूसरा शमूएल 1:15 में पढ़ते हैं। तब दाऊद ने एक जवान को बुलाकर कहा, निकट जाकर उस पर प्रहार कर। तब उसने उसे ऐसा मारा कि वह मर गया। दाऊद ने परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ उठाने वाले के लिए उस अमालेकी को दंड दिया। दूसरा शमूएल 1:16 में आगे लिखा है, और दाऊद ने उससे कहा, तेरा खून तेरे ही सिर पर पड़े, क्योंकि तूने यह कहकर कि मैं ही ने यहोवा के अभिषिक्त को मार डाला अपने मुंह से अपने ही विरुद्ध साक्षी दी है। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि उसने झूठ कहा तो यह वास्तव में जानलेवा सिद्ध हुआ। दाऊद ने उसे स्पष्ट कह दिया था, यदि तू झूठ कहता है तो तेरा लहू तेरे ही सिर हो, तूने अपने मुंह से अपने ही विरुद्ध साक्षी दी है। मेरे विचार में उसी ने शाऊल को मारा था। दाऊद ऐसा कभी नहीं कर पाता, दाऊद ने उसे दंड दिया। दूसरा शाऊल 1 अध्याय उसके 17 पद में हम पढ़ते हैं, तब दाऊद ने शाऊल और उसके पुत्र योनातान के विषय यह विलाप गीत बनाया। मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि शाऊल और योनातान के लिए दाऊद का दुख व्यक्त है जो सच्चा था। दूसरा शाऊल 1 अध्याय के 18 पद में हम देखते हैं, और यहूदियों को यह धनुष नाम गीत सिखाने की आज्ञा दी, यह याशार नाम पुस्तक में लिखा हुआ है। शाऊल ने इसराइल के लिए कुछ किया अवश्य था। इसराइल के पास लोहे के हथियार नहीं थे। शाऊल ने उन्हें तीर चलाना सिखाया था। तीर कमान दूरभेद हथियार थे, अथा दूर से ही इसे वेधा जा सकता था। हमारे पूर्वज इसके गवाह हैं। हमारे भारतीयों ने कमान का बहुत उपयोग किया है। दूसरा शाऊल 1 अध्याय उसके 19 पद में हम पढ़ते हैं, हे इसराइल, तेरी शिरोमणि तेरे ऊंचे स्थान पर मारा गया, हाय शूरवीर क्यों कर गिर पड़े हैं। यह विलाप गीत रूप में है जो इसराइल के मधुर भजनकार के मन में स्वतः ही उभरा था। दूसरा शाऊल 1 अध्याय उसके 20 में है, गत में यह न बताओ और न अश्कलोन की सड़कों में प्रचार करना, न हो कि पलिश्ती स्त्रियां आनंदित हो, न हो कि खतना रहित लोगों की बेटियां गर्व करने लगे। गत में यह न बताओ, गत नगर पलिश्तियों की राजधानी था, और अश्कलोन की सड़कों में प्रचार करना, अश्कलोन गाजा पट्टी में है और पलिश्तियों के 5 नगरों में से एक था। तब हम आगे देखते हैं दूसरा शाऊल 1 अध्याय उसके 21 और 22 पद में, हे गिलबो पहाड़ों, तुम पर न ओस पड़े और न वर्षा हो और न भेंट के योग्य उपज वाले खेत पाए जाएं, क्योंकि वहां शूरवीरों की ढालें अशुद्ध हो गई और शाऊल की ढाल बिना तेल लगाए रह गई। जूझे हुओं के लोहू बहाने से और शूरवीरों की चर्बी खाने से योनातान का धनुष लौट न जाता था और न शाऊल की तलवार छूछी फिर आती थी। कोई नहीं कह सकता था कि शाऊल और योनातान कायर थे, वे हमेशा ही विजयी होकर के लौटते थे। दूसरा शाऊल 1 अध्याय उसके 23 और 24 में हम पढ़ते हैं, शाऊल और योनातान जीवन काल में तो प्रिय और मनभाव थे और अपनी मृत्यु के समय अलग न हुए। वे उकाब से भी वेग चलने वाले और सिंह से भी अधिक पराक्रमी थे। हे इसराइली स्त्रियों, शाऊल के लिए रो, वह तो तुम्हें लाल रंग के वस्त्र पहनाकर सुख देता और तुम्हारे वस्त्रों के ऊपर सोने के गहने पहनाता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि शाऊल देश में खुशहाली लाया था। तब हम दूसरा शाऊल 1 अध्याय के 25 पद में पढ़ते हैं, हाय युद्ध के बीच शूरवीर कैसे काम आए, हे योनातान, हे ऊंचे स्थानों पर जूझे हुए। यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद और योनातान लंगोटिया यार थे, उनका परस्पर प्रेम आघात था, अतः दाऊद का विलाप सच्चा था। तब हम दूसरा शाऊल 1 अध्याय के 26 पद में पढ़ते हैं, हे मेरे भाई योनातान, मैं तेरे कारण दुखित हूँ, तू मुझे बहुत मनभाव जान पड़ता था, तेरा प्रेम मुझ पर अद्भुत वरन स्त्रियों के प्रेम से भी बढ़कर था। जी हाँ, तेरा प्रेम स्त्रियों के प्रेम से भी बढ़कर था। यह बड़ी ही रोचक बात है कि उसने योनातान की बहन से विवाह किया था और आगे चलकर मीकल ने उससे विश्वासघात किया। मेरे विचार में एक प्रसिद्ध नायक होने के कारण मीकल उससे प्रेम करने लगी थी, परंतु बाद में उसने दाऊद को तुच्छ जाना। मेरे प्रियो, दाऊद अपने प्रेम में सफल नहीं रहा था। इस क्षेत्र में मैं केवल अबीगेल को ही एकमात्र मर्यादा वाली स्त्री मानता हूँ। मैं उनसे सहमत नहीं हूँ जो कहते हैं कि बतशेबा एक अति उत्तम स्त्री थी। मैं ऐसा नहीं सोचता। यद्यपि दाऊद का संबंध उसके साथ पाप का था और परमेश्वर ने उसे दंड भी दिया, परंतु मेरा कहना यह है कि वह छत पर ऐसी हालत में क्यों घूम रही थी। अतः दाऊद की यह समस्या थी, परंतु योनातान के लिए वह कह सकता था कि वह मृत्यु तक उसका निष्ठावान था। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, एक अति रोचक बात यह है कि दाऊद के साथी जान देने तक उसके निष्ठावान थे। यह उसकी मोहिनी थी कि उसके अनुयायी उससे अलग नहीं होते थे। दाऊद का व्यक्तित्व ऐसा ही था। हम दूसरा शमूएल 1 अध्याय उसके 27 पद में पढ़ते हैं, हाय शूरवीर क्यों कर गिर गए और युद्ध के हथियार कैसे नाश हो गए। मेरे मित्रों, विशेष करके योनातान के लिए यह एक अनुपम श्रद्धा थी। शाऊल और योनातान के लिए दाऊद का दुख मर्म स्पर्शी था। परमेश्वर के वचन में यह विशिष्ट विलाप गीतों में से एक है। मित्रों, हम अगले अध्याय में देखेंगे कि दाऊद यहूदा का राजा बनता है। हम शाऊल के सेनापति अबनेर को भी देखेंगे और हम देखेंगे कि शाऊल के सब पुत्र सब योद्धा युद्ध में मार डाले गए। अबनेर ने शाऊल के सबसे छोटे पुत्र इशबोशेत को शेष 11 गोत्रों पर राजा बना दिया। परिणाम स्वरूप गृह युद्ध छिड़ गया और दाऊद ने अबनेर की सेना को गृह युद्ध में अंततः हरा दिया और गृह युद्ध के कारण दुर्बल हुए संपूर्ण इसराइल 12 गोत्रों पर दाऊद राजा बना। आरंभ में उसने हेब्रोन को अपना घर बनाया और बाद में यरूशलेम के सियोन पर्वत पर जा बसा। दाऊद को इस स्थान से सर्वाधिक लगाव था। मेरे मित्रों, अब हम एक ऐतिहासिक भाग में प्रवेश कर रहे हैं, जबकि बहुतों के विचार में यह भाग अरुचिकर वृतांत है, परंतु यह भाग संपूर्ण धर्मशास्त्र का सर्वाधिक रोमांचक वृतांत है। इसमें अति उत्तम आत्मिक शिक्षाएं भी हैं। मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक आशीषों को प्राप्त किया है और इस बात को सीखा है कि जब हम परमेश्वर से हट जाते हैं तो हमारा विनाश होता है। इसलिए हम परमेश्वर के निकटता में बने रहें और उसके भय के अनुसार अपना जीवन जिएं। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
तेरी ये नेक मूरत यूं ही रहे दिल में सदा, तू रहे मन में हमेशा, पाप न हो हमसे। तेरी ये नेक मूरत यूं ही रहे दिल में सदा, तू रहे मन में हमेशा, पाप न हो हमसे। यीशु तुम्हें अपने दिल में बसाया है, बसा के तुझको अपना बनाया है। यीशु तुम्हें अपने दिल में बसाया है, दिल में बसा के तुझको अपना बनाया है।